Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन याद रखना कि वो नमक की हाथी नहीं है, वो नमक सी बनी हुई, नमक से बनी हुई है, और किसी योगी ने उसमें प्राण दे दिए, जीवन दान दिया है, उसके अंदर प्राण तत्व का संचार कर लिया है, और वो अपने हाथी को मिलने के लिए पहुंच गई समुद्र में। उसको मालूम पड़ा कि समुद्र में मेरा साथी है, और सचमुच है, हा? लेकिन वो समुद्र में जाके अपने साथी को मिलकर वापस आएगी कि नहीं? क्यों नहीं आएगी? अरे वो नमक की है ना, वो नमक की ना होती तो आ जाती हो, वो नमक की है, और वो नमक की तभी तक नमक की है, अरे वो जब तक समुद्र में नहीं मिलती तभी तक है, और जैसे समुद्र में मिली और वो समुद्र में समा गई, और उसके मन में वो आकांक्षा बनी रहती कि नहीं, मैं अपने साथी को मिलूं, हाथी को मिलूं, हो गया व्यक्तित्व विध्वंस हो गया, जीव भाव समाप्त हो गया। ये जब तक आप अलग हैं तभी तक सारी चीजें हमारे अंदर, सारी चीजें हैं। जब तक परमेश्वर को हम, ब्रह्म तत्व को नहीं मिलते हैं तभी तक सारी चीजें हैं, और एक बार वहां प्रवेश हो गया, एक बार समझ लिया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसी को बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म हो जाता है, वो समझ लेता है। ये जब तक समझते नहीं तभी तक सारी चीजें हैं। गंगा मैया ने घूट घूट के पी लिया, मैं हो गया गंगा जल, और अब वो गंदे नाले का जल था, लेकिन गंगा जी में मिलने के बाद क्या बन गया? गंगा जल। और गंगा जल की एक सबसे बड़ी विशेषता है, आप गंगा जल को बोतल में बंद करके रखो, सालों रख सकते आप। केवल एक ही ऐसा जल है जिसको आप सालों रख सकते हैं। आप किसी भी जल को आप ले लीजिए और बंद करके रखिए, थोड़े दिनों के बाद सड़ने लगता है, मिट्टी उसके अंदर दिखाई देने लगती है, और ढक्कन खोल के आप सूंघो तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। लेकिन गंगा जल में नहीं, मेरे पास भी कई सालों का गंगा जल है, कई सालों का, मैं खोल के देखता हूं जैसे लगता है कल ही लाया हुआ है। क्या आश्चर्य! इसलिए तो शुद्ध बोलते, गंगा जल शुद्ध है, परमात्मा शुद्ध है, ब्रह्म तत्व शुद्ध है, निरुपाधिक, जहां किसी भी प्रकार का संसार का, अशुद्धि का संस्पर्श नहीं है। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसिक्तम, आचार्य यम कहते हैं कि शुद्ध जल में शुद्ध जल मिला, तादृगी वो भवती, वैसे ही हो जाते हैं, बाद में आप भेद नहीं कर सकते, आपको नहीं दिखाई देगा कि ये जल हमने इसमें मिलाया है, वहां कोई भेद नहीं, भेद की कोई प्रतीति नहीं है, वहां अलग कोई अस्तित्व नहीं है। एवं मुनेर विजानत आत्मा भवती गौतम, हे गौतम, एवं मुनेर विजानत, इस प्रकार मुनि लोग जानकर आत्मा भवती, वो आत्मा हो जाते हैं। क्या पहले अनात्मा थे क्या? इसलिए शब्द का प्रयोग किया विजानत और मुने, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुने ही मने मननात मुनि, जो मननशील है, मुनेर भाव मौनम, ये मौन, मौन आप बोलते हैं मौन, ये मुनेर भाव, जब नागपत्नियां भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने लगी, प्रार्थना करने लगी। भागवत का बड़ा सुंदर प्रसंग है। नागपत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मौनशालिनी, आप मौनशालिनी हैं। मतलब ये नहीं कि आप मौन हैं। उन्होंने कहा कि आपको पाने का मार्ग मौन है। आपको यदि पाना है तो मौन होना बहुत जरूरी है। और ये मौन केवल वाणी का नहीं, ये मौन इंद्रियों का भी है, मौन आपका बुद्धि का भी है। क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। यह हमारा मन बहुत ज्यादा बोलता है, यह हमारी इंद्रियां बहुत ज्यादा बोलती हैं, बहुत ज्यादा बोलती हैं। और उसका दिन भर बोलना सुनते रहते हैं, आंख बोलती रहती, वासना बोलती रहती है, ये करो वो करो, मैंने ये किया मैं वो करूंगा। ये क्या है? ये इंद्रियों की विक्षिप्त अवस्था ही तो इसका बोलना है। और यहीं से हम परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम भीड़ में खो जाते हैं। आप आंख बंद करके बैठकर देखिए अपने अंदर कौन कौन बोल रहा है। वह हमारी बहुत सारी चीजें अंदर से मालूम पड़ती हैं। वासना बोल रही है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि की मांग कर रही है। और ये हमारे इंद्रिया मौन हो जाए, मन मौन हो जाए, बुद्धि मौन हो जाए। ब्रह्म जी महाराज श्री ने कहा कि आपको मौन भी होना चाहिए, कभी कभी मौन भी होना चाहिए। और इसकी चिंता नहीं करना चाहिए कि मन में कोई चीजें आ रही हैं, और इसकी चिंता भी नहीं करना चाहिए कि कभी आपको लिख के भी बोलना पड़े, आपको अपनी बात लिख के रखना पड़े। मौन एक संकल्पबद्धता है, मौन आत्मिक संकल्प है। नहीं बोलने का नाम मौन नहीं है, केवल नहीं बोलने का ही नाम मौन होता तो आज अभी एक घंटे के लिए सब मौन होते। आपके घर में पूरे दिन में कितना घंटा बोलते हैं आप हिसाब लगा लीजिए थोड़ा। और मुंबई में ऐसे भी लोग बोलने वाले कम मिलते हैं, आदमी मिलता कहां है। यहां तो एक ही चीज बोलती है, टीवी। टीवी दिन भर बोलती रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो। आदमी के पास समय कहां है? बोलने वाला हो तभी बोलेंगे ना आप। आपके पास आदमी नहीं है, सामने कोई आदमी नहीं तो आप कहां से बोलोगे? आप दिन भर आपके पास कोई आदमी नहीं है तो आप बोल नहीं रहे, केवल फोन पर बात करें थोड़ा। तो आप 12 घंटों में कम से कम 8 घंटे तो मौन ही होंगे ना। अब हम कम से कम 1 घंटा लगातार आपके सामने बोल रहे हैं, आप इतना लगातार 1 घंटा बोलते हैं क्या घर में? अरे बोलते होंगे, जब तक आपके सामने आदमी है और चला गया ऑफिस, और नौकर भी चला गया, आप अकेले रहे, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, आप क्या करोगे घर में अकेले? आप बोलोगे नहीं, लेकिन उसको मौन नहीं बोलते हैं। नहीं बोलने का नाम मौन होता तो मौन का कोई मूल्य ही नहीं होता। और ऐसे सब लोग मौनी बाबा रहते, सब लोग मौनी। मैंने आपको एक बार सुनाया था ना, इंदौर में मैं एक बार चातुर्मास करता रहा, वहां मौन था 2 महीने तक। सबको इशारा करता था, भैया सब लोग मौन रखो मौन रखो। सभी बहुत सारे लोगों ने मौन रखा। एक माताजी बोली, महाराज मैंने 4 घंटे का मौन लिया है। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, 4 घंटे का मौन? मैंने कहा बहुत अच्छी बात मैया, कौन सा टाइम रखा है? उन्होंने कहा कि रात में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। मैंने कहा इतना सुंदर समय किस लिए रखा रात में? उन्होंने कहा रात में तो कोई बोलने वाला ही नहीं होता, मैं सो जाती हूं। मैंने सोचा ये समय सबसे अच्छा है मौन। इसको मौन नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने का नाम मौन नहीं है। मौन माने एक संकल्प है। आपने संकल्प लिया नहीं बोलना है, और ये बोलने सापेक्ष है। मौन बोलने सापेक्ष होता है। बोलने वाला है सामने और आप नहीं बोल रहे तो मौन है, और बोलने वाला ही नहीं है तो कोई मौन नहीं, और मौन एक अनुभव है। जब आप मौन का संकल्प लेते हैं तो आप अकेले में बैठे रहोगे तो भी आपको मौन जैसा लगेगा। अभी मैं नवरात्रि में मौन था, सुबह उठते ऐसा लगता है कि मौन, वो सेवक आता है तभी मैं इशारा कर देता हूं, ऐसा लगता है अंदर से लगता है मौन में हूं। जैसे प्रवचन करके नीचे उतरने लगता हूं तो मेरे को ऐसा महसूस होता है मैं मौन हूं, ये सचमुच होता है। अगर हम एक घंटा तक आपके सामने लगातार बोले और जैसे नीचे उतरने लगता है ऐसा लगता है कि मौन अवाक, वहां कोई शब्द नहीं है। इसलिए आप उसकी चिंता मत करना कि कभी लिख के बताना पड़े, मौन एक संकल्पबद्ध संकल्प लेना चाहिए। हम एक घंटा नहीं बोलेंगे, आधा घंटा नहीं बोलेंगे, 10 मिनट का भी मौन रखो आपको मालूम पड़ेगा कि हम मौन हैं। आप केवल 10 मिनट का मौन रखो भैया घड़ी देख के, और उस समय बोलना नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा मौन अंदर से मौनशाली ने। नागपत्नियों ने कहा कि भगवान आप मौनशाली हैं, आपको पाने का मार्ग है मौन हो जाना, वाणी का मौन, इंद्रियों का मौन, और मौन माने मुनेर भाव मौनम और मननशीला। मुनि माने मननशील, जो मनन करता है परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, इस जगत के बारे में, जगत के पदार्थों के वास्तविक स्वरूप के बारे में जो मनन करता है। ये मनन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। श्रुति कहते हैं आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा को देखना है, आत्मा का प्रत्यक्ष करना है। आत्मा माने कोई दूसरी चीज नहीं, आत्मा माने हम स्वयं, अपने आप को देखना है। तो सबसे बड़ा जो उपाय है वो श्रवण है, आत्मा के बारे में सुनना है। और यहां केवल आत्मा के बारे में नहीं, अनात्मा के बारे में भी, क्योंकि हम समझते हैं जो उसके बारे में भी, क्योंकि हमें आत्मा की पहचान नहीं है, हमें अनात्मा की पहचान है। पहले वो तो समझे जो हम समझते हैं, हम अपने आप को अनात्मा समझते हैं। न्याय दर्शन में एक बहुत सुंदर सूत्र है, साधर्म मय धर्माभ्याम, तत्व ज्ञानात् निश्रेय साधिगम। वो कहते हैं कि साधर्म और वैधर्म का बोध होने से पदार्थों के, आत्मा के नहीं, बाहर के अनात्म पदार्थों का बोध हो गया साधर्म और वैधर्म। बोले तत्व ज्ञानात् निश्रेय साधिगम, बोले उसको तत्व ज्ञान हो जाता है और तत्व ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। और ये साधर्म वैधर्म यही है, ये शरीर है और ये शरीर के धर्म है, ये आत्मा है और ये आत्मा के धर्म है। वेदांत की दृष्टि से आत्मा में कोई धर्म नहीं होता, वो निर्धर्मक है। न्याय दृष्टि से आत्मा में भी धर्म माने गए, गुण माने गए। आप निर्धर्मक आत्मा में भी कल्पित धर्मों को मान लीजिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, वो आत्मा जो है सत्य है, ज्ञान है, आनंद है, तो आपको मालूम पड़ा ये शरीर है असत है, दुख रूप है, ये परिवर्तनशील है, परिच्छिन्न है, ये मरने मिटने वाला है। और दूसरी तरफ मालूम पड़ा आत्मा व्यापक है, सत्य है, आनंद रूप है, व्यापक है, साधर्म और वैधर्म ये बोध हो गया अपने, इसके ये धर्म है, ये इसके ये धर्म नहीं है। बात बहुत अच्छी है, इतनी बात हम ले सकते हैं न्यायिकों की। आपको ज्ञान पदार्थों के बोध में, ले जाता है अलग 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 बोध में, जैसे माइक हैं और ये पुस्तक हैं। आपको मालूम है कि पुस्तक हैं और ये माइक हैं, दोनों एक है कि अलग हैं? अलग हैं। कैसे मालूम पड़ा? इसके लक्षण अलग हैं, इसके लक्षण अलग हैं। जैसा माइक दिखता है वैसा पुस्तक नहीं दिखती है, क्योंकि इसके दोनों के धर्म, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। ये ज्ञान के बिना आप जानेंगे कैसे? आत्मा के बारे में जाना जाए और अनात्मा के बारे में कोई पता ही ना हो तो संभावना है फिर भ्रांति हो जाए कि अनात्मा आत्मा तो नहीं। इसलिए दोनों को इसलिए विवेक बोलते हैं। विवेक माने नित्य और अनित्य, जड़ और चेतन, परिच्छिन्न और व्यापक, इन चीजों का सही सही बोध हो, ये विवेक है। विचिर पृथक भाव है। आपको मालूम पड़ा ये आत्मा है अनात्मा है, ये सत्य है असत्य है, ये नीति है अनीति है, धर्म है अधर्म है, ये भोग है ये मोक्ष है, और ये पार्थक्य बोध आदमी को ले जाता है, आपको मनन में ले जाता है। ये श्रवण है, आपने सुना, मालूम पड़ा आत्मा अनात्मा शरीर, ये सारी चीजों का बोध हो गया, पता चला। ये श्रवण है, सुनकर के पता चला, और उसके बाद फिर मनन। कल हम लोग पातंजलि योग दर्शन में शाम के सत्र में एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि पहले कल्पित साधना की कल्पना, पहले साधना की कल्पना करना है। क्या कल्पना करना है? बोले मैं बाहर भी हूं। आपको कल्पना करना है कि मैं बाहर भी हूं और मैं भीतर भी हूं। वेदांत में आपको समझाया जाता है आप आत्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, और ब्रह्म का अर्थ है व्यापक। व्यापक का अर्थ है जिसका अस्तित्व सर्वत्र हो। व्यापक का अर्थ है जिसका अस्तित्व सर्वत्र है। आत्मा व्यापक है, माने आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी, यही अर्थ है। आत्मा की व्यापकता का अर्थ यही है कि आप अंदर भी हैं और आप बाहर भी हैं। आप अंदर हैं, बाहर नहीं, आप व्यापक नहीं हो सकते। व्यापक अर्थ यही है, जैसे आकाश वत, आकाश अंदर भी है बाहर भी है, वैसे आप अंदर भी हैं बाहर भी हैं। लेकिन ईमानदारी से आप कहां पर हैं? आपको शास्त्र जो कहता है, लेकिन आपको यदि अपने अनुभव से ईमानदारी से कहना हो तो आप कहां पर हैं? आप अंदर हैं कि बाहर हैं? आप अपने अनुभव से कहना चाहे तो आप अंदर हैं, बाहर नहीं हैं। मैं फोन करूं और पूछूं गिरी जी कहां हैं, आप क्या बोलोगे? महाराज सब जगह पर हैं। ऐसा बोलोगे आप? ईमानदारी से आप बोलेंगे प्रेमपुरी आश्रम में, या बोलेंगे आप घर में अत्रैव अस्मि, अस्मिन्नेव देशे अस्मि, मैं इस देश में हूं। लेकिन आपको श्रुति कहती कि आप सर्वत्र हैं, आप केवल अपने घर में ही नहीं है, आप केवल अपने शरीर में ही नहीं है, आप बाहर भी। पतंजलि जी ने बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर, मेरे को बहुत अच्छी लगी बात, एक भविन मेरे लिए बहुत नावीन्य था। उन्होंने कहा कि आप बाहर भी हैं, ऐसी कल्पना करो, साधन काल में होने की कल्पना है, आप बाहर भी हैं लेकिन मालूम नहीं है। श्रुति कहती कि आप बाहर भी हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है, और श्रुति की बात को सुनकर आप निधिध्यासन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मैं बाहर हूं, मैं बाहर हूं। अच्छा, आप बोल रहे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अच्छा, ये क्या सचमुच ब्रह्म है क्या? ईमानदारी से क्या लगता है क्या मैं ब्रह्म हूं? श्रुति तो कहते हैं क्या आप ब्रह्म हैं। जब तक भ्रांति का छेदन ना हो, जब तक अज्ञान का भेदन ना हो, तब तक आपकी कल्पना है। ये जो दोहराना है ये कल्पना है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ये दोहराना एक प्रकार से आपकी मानसिक कल्पना है। और ये मानसिक कल्पना वास्तविकता में बदलेगी। आप श्रवण किए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, आप मनन कर रहे हैं, मनन 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 कर रहे, बहुत जबरदस्त मनन, मने एक आत्मिक साधना है ये, केवल श्रवण श्रवण के लिए नहीं, ये मनन में ले जाने के लिए। और आपने समझ लिया, बहुत विश्वास है शास्त्रों के ऊपर, और आपने समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आप चिंतन कर रहे हैं, जैसे कोई योगी बैठकर मन की एकाग्रता का प्रयत्न करता है, ऐसे कोई साधक वेदांत का बैठकर वो साधना कर रहा है, मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर नहीं हूं। अखंड अपनी मन की वृत्ति को निर्मित कर रहा है, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। एक बार मैंने विरक्त शिरोमणि वामदेव जी महाराज जी को पूछा, भगवान क्या वेदांत की दृष्टि से समाधि लग सकती है क्या? उन्होंने कहा हां समाधि लग सकती है। आप चिंतन कर रहे हैं मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, अखंड धारा अंदर से चिदय वृत्ति अखंड धारा आपके अंदर निर्मित हो गई, मैं आत्मा शरीर नहीं हूं। और वो अखंड जो आत्मा की धारा है वो आपको समाधि में ले जाएगी। मैंने एक बार परम पूज्य महामंडलेश्वर कैलाश आश्रम के स्वामी जी महाराज को पूछा, उस समय स्वर्गाश्रम में रहा करते थे और उनके पास हमने अध्ययन भी किया है, प्रस्थान त्रयी का, 90 न्याय का, चित सुखी जो बृहत प्रस्थान त्रयी है, चित सुखी का अध्ययन हमने पूरा किया था उनके पास, और भी बहुत सारे ग्रंथ। जब वो सब कुछ छोड़कर कैलाश आश्रम को भी छोड़ के स्वर्गाश्रम में रहते थे, उसके बाद फिर हम लोग बनारस चले गए, उनके साथ थे देवप्रयाग में, हम लोग वर्षों थे। मैंने यही बात पूछी कि वेदांत जो है केवल पुस्तकी है या केवल हम विचार का विषय बना लेते हैं, या हम अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ करते हैं उसको, जैसे जप है, अक्सर हम सुनते हैं भैया वेदांत में कुछ करना ही नहीं है, अक्सर हम सुनते हैं वेदांत में कुछ करना नहीं। तो मैंने पूछा कि जैसे जप है तो करना है, आप ध्यान कुछ करना, आप जो भी कुछ करते हैं वह करना है, और बिना किए कुछ होता नहीं है, तो वेदांत में क्या है, कुछ करना है क्या? उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली कि आपको करना है क्या, अरे मनन करना है ना, आपने सुन तो लिया है, अब आपको क्या करना है, उसका मनन करना है। महाराज जी ने बोला कि मैं जब स्वयं की बात बोली, मैं मनन करता था, एकांत में बैठ करके मनन करते, मैं ब्रह्म हूं मैं आत्मा हूं मैं शरीर नहीं हूं, और उसके बाद फिर एक दिव्य अनुभव में प्रवेश कर जाते थे। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया, जैसे एक बहुत बड़ा कमरा है, हॉल है, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। अब यही तो आपके सामने बहुत बड़ा हॉल है, इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, अनेकों कुर्सियां पड़ी हैं, टेबल पड़े हैं, मैं पड़ा हूं, आप पड़े हैं, सारी चीजें इस एक हॉल में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, और वो जो चीजें पड़ी हैं ना वो सब अलग 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 है, छोटी छोटी इकाइयों में है, और जो हॉल है वो सबसे बड़ा है, और उस हॉल में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो बोले वो कि हम ऐसा अनुभव करते थे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं और उसमें सारी दुनिया की चीजें पड़ी हुई हैं और उसमें ये शरीर भी पड़ा हुआ है, ये शरीर भी उसी में पड़ा हुआ है। अभी अपने को ऐसा लगता है कि मैं शरीर में पड़ा हूं, शरीर में मैं हूं और ज्ञान की अनुभूति में साधक को लगता है कि मेरे में शरीर है। अज्ञान की अवस्था में लगता है कि मैं शरीर में हूं और ज्ञान की अवस्था में साधक को लगता है कि ये शरीर भी मेरे में है, मेरे में है। और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए पहले कल्पना करो, ये कल्पना ही है, अपने को मालूम नहीं पड़ रहा है मैं शरीर नहीं आत्मा, मैं व्यापक हूं। और पहले तो कल्पना ही करना है, मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि भ्रांति है, बहुत गहरी भ्रांति है। और जब मालूम हो जाए, मुनेर विजानता, ये मुनि मननाथ, मनन किया, श्रवण मनन मनन मनन, और उसके बाद वो कल्पना वास्तविकता में बदल जाती है और वो साधक फिर अनुभव करने लगता है विजानता आत्मा भवति गौतम। और उसके बाद वो साधक अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूं, मैं वो जान लेता है फिर मैं आत्मा हूं, पहले जान रहा था मैं शरीर हूं और उसके बाद फिर अभ्यास के द्वारा उसने जान लिया, वास्तविक जान लिया मैं आत्मा हूं। इस प्रकार बड़ा सुंदर ये प्रकरण हो गया पूरा। अब हम लोग दूसरे प्रकरण में प्रवेश करेंगे। ओम शांति शांति शांति।